हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 15 टेक्स्ट नंबर 6। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए पूरी श्रद्धा भाव और प्रेम के साथ मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सकें, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथ विदं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूति देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। हरे कृष्ण। हम चैप्टर नंबर 15 में पढ़ रहे हैं पुरुषोत्तम योग यानी द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। इसमें भगवान श्री कृष्ण शुरू में एक इस संसार को एक वृक्ष से कंपेयर करते हुए बता रहे हैं कि ये एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसको ऐसे बताया, आगे हमें श्री प्रभुपाद ने बताया कि जो रियल ट्री है ना, जो असल में जो दरख्त है, द रियल ट्री, वो कहाँ पर है? वो यहाँ इस संसार में नहीं है, वो ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। इसका मतलब है द ट्री ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल ट्री ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यानी क्योंकि उल्टा है तो ये सिर्फ और सिर्फ अक्ष है, सिर्फ प्रतिबिंब है ऊपर वाले ट्री का। वास्तव में जो ट्री है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है और दिस ट्री बीइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्री, ये जो है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब है। और हम चूंकि इसी वृक्ष के अंदर सुख आनंद संतुष्टि चाहते हैं, इसलिए हमें बारंबार परेशान होना पड़ता है क्योंकि रिफ्लेक्शन में कभी आनंद नहीं आता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि इस वृक्ष की जड़ों को काटकर आपको क्या करना पड़ेगा? तत्तः पदम तत् परिमार्गितम यस्मिन गताना निवर्तन्ति बोयः। तत् पदम, तत्तः पदम यानी ऐसे, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा जहां पर जाकर वापस लौटना ना पड़े, यानी ऐसी स्थिति को खोजना पड़ेगा। क्योंकि इस वृक्ष में तो जब तक इधर उधर जाते रहेंगे तो फिर हम कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो फिर यहाँ इस वृक्ष में फंसने के बाद पहला कार्य करना क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 3 में बताया कि आपको क्या करना, असंग शस्त्र दृढ़ वचित्वा, असंग यानी आसक्ति से रहित होकर इस बहुत ही घने जड़ों वाले वृक्ष को काटना होगा। तत्तः पदम तत् परिमार्गितव्यम, उसके बाद आपको ऐसी जगह की तलाश करनी होगी यस्मिन गताना निवर्तन्ति भूयः, जहां पर जाकर वापस से इस वृक्ष में आपको फंसना ना पड़े। और कल हमें भगवान श्री कृष्ण ने 5वें श्लोक में बताया कि वहां पर जाने के लिए क्या क्या योग्यता, निर्माण मोह, आपको मान मोह और अपनी प्रतिष्ठा इत्यादि के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए, उसके विषय में नहीं सोचना चाहिए। जित संग दोषा, और संग के दोषों से आपको मुक्त होना चाहिए। आध्यात्म नित्य, कंटिन्यू आध्यात्म में रहना चाहिए। विनिवर्तकामा, अपनी इच्छाओं से निवृत्त होना चाहिए। द्वंद्व व मुक्ता, सुख दुख संग, जो भी द्वंद्व है संसार में उसको एक समान समझना चाहिए। और बहुत ही सुंदर भगवान ने कहा, गच्छन अमूढ़ा पदम, अगर आप अमूढ़ बन जोगे यानी कि अगर आप देहात्म बुद्धि से बाहर निकलोगे तभी आप उस जगत में पहुंच सकते हो। किस जगत में, जिस जगत के बारे में भगवान ने श्लोक नंबर 3 में कहा है, तत्तः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन गताना निवर्तन्ति भूयः, ऐसी जगह जहां पर जाने के बाद आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। तो आज श्लोक नंबर 6 में भगवान हमें उस जगह के विषय में बताएं, क्योंकि भगवान ने पहले कहा कि आपको खोजना पड़ेगा। तत्तः पदम पद परिमार्गितव्यम, आपको सर्च करना पड़ेगा। फिर देखा होगा भगवान ने कि अर्जुन कहाँ इस संसार में रहकर उस वृक्ष को, उस रियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कैसे जानेगा, या मनुष्य मात्र हम जो हैं वो कैसे जानेंगे, नहीं जान सकेंगे क्योंकि हम तो इस वृक्ष में फंसे हुए हैं। तो भगवान को ही बताना पड़ेगा कि वो कौन सी जगह है जहां पर जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा मेरा प्रिय श्लोक है। इसकी जो सेकेंड लाइन है वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अक्सर बोलते हैं हम लोग, कोट किया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण आज अपने धाम के विषय में बताते हैं कि मेरा धाम कौन सा है जहां पर जाने के बाद आपको कभी भी वापस नहीं आना पड़ेगा, वो कैसा धाम है। तो आज हम भगवान के गौलोक वृंदावन धाम के विषय में सुनते हैं, चैप्टर 15 टेक्स्ट नंबर 6। भगवान कहते हैं, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यत्कत्वान निवर्तन्ते तत्थाम परमं मम। न तत् भासयते सूर्यो, न तत् नहीं वह, वह क्या, वो जगह जो मेरा परम धाम है वो नहीं भासयते प्रकाशित होती है सूर्यो, सूर्य से प्रकाशित नहीं होती, यानी कि इस भौतिक जगत के अपोजिट है ना, इस भौतिक जगत किससे प्रकाशित होता है, अगर सूर्य न होता तो अंधकार ही अंधकार होता। लेकिन भगवान कहते हैं जो वो जगह है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो सूर्य से प्रकाशित नहीं होती है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है तो क्या चंद्रमा से होती है, तो भगवान कहते हैं नहीं, न शशांको, शशांको कहते हैं चंद्रमा को, शशांको चंद्रमा से भी प्रकाशित नहीं होती है, तो फिर अग्नि से, तो भगवान कहते हैं न पावक, न मतलब नहीं, पावक का मतलब अग्नि या बिजली, इन सब से प्रकाशित नहीं होता है। मतलब भगवान अपने उस गौलोक वृंदावन धाम के विषय में बताते हैं कि वह स्वयं प्रकाशमान है, ना उसे सूर्य प्रकाशित करता है, ना अग्नि प्रकाशित करती है, और ना ही चंद्रमा प्रकाशित करता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण उसकी एक दूसरी क्वालिटी बताते हैं, जो सुपर क्वालिटी है उस जगत की, जो और अन्य किसी लोक में नहीं है। भगवान के लोक के अतिरिक्त और किसी ब्रह्मांड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 8.16 में आब्रह्म भुवनालोक पुनरावृत्ति नो अर्जुन, कि अगर संसार के उच्चतम लोक ब्रह्म लोक तक भी पहुंच जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा। लेकिन भगवान अपने विषय अपने लोक के विषय में बताते हैं, यत गत्वा, गत्वा मतलब जाकर, यत मतलब वहां पर जाकर, ना निवर्तन्ते, कभी नहीं वापस आते हैं, तद धाम परमम मम, तद धाम मतलब वह धाम है परमम, एकदम सबसे सुपर स्पिरिचुअल धाम, परमम मम मतलब भगवान अपने धाम के विषय में बताते हैं, दैट सुप्रीम अबोड ऑफ माइंड, यानी भगवान कहते हैं वो मेरा धाम, जो मेरा है धाम, वो बहुत ही परम है, वो दिव्य है, वो इस संसार के तरह सूर्य चंद्रमा आदि से प्रकाशित नहीं होता है। और भगवान कहते हैं वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंचते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर वापस कभी नहीं लौट आते। यानी भगवान श्री कृष्ण ने आज अपने धाम के विषय में हमें बताया है और श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर तरीके से विस्तार करेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गौलोक वृंदावन कहा जाता है, जिनमें आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, ना चंद्र प्रकाश की अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। जो दिव्य लोक होते हैं वो स्वयं प्रकाशित होते हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित है। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीली आकाश बनता है, चमकीला आकाश बनता है, यानी कि उस एक खाली नहीं है, बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं और उनके चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वो ब्रह्म ज्योति उस गौलोक की आभा है, उसकी चमकीली आभा है। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गौलोक वृंदावन धाम से निकलता है। वास्तव में कहां से निकल रहा है? गौलोक वृंदावन धाम से निकल रहा है। इस तेज का एक अंश महतत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। अब ये देखो, एक मतलब कृष्ण लोक जो है, भगवान का गौलोक वृंदावन धाम जो है, उससे तेज निकल रहा है और उससे स्वयं सब कुछ प्रकाशित प्रकाशमान हो रहा है, ये वहीं से आ रहा है। और इस तेज का एक अंश महतत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। महतत्व बताया था ना मैंने आपको, जिस जो 24 तत्व होते हैं, पांच महाभूत, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच इंद्रियों के विषय मन बुद्धि अहंकार और गुण, ये महतत्व से आच्छादित रहता है, यानी उससे ढका हुआ है एक अंश। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में आता है कि 25% सिर्फ जो भगवान के तेज का 25% जो है वो इस महतत्व से ढका हुआ है, आच्छादित है। वहां पर ये गौलोक वृंदावन धाम का तेज नहीं आ रहा है। और ये जो प्रतिबिंब वाला वृक्ष है ना, वो सिर्फ इस 25% भगवान के लोकों में से इसमें सिर्फ आच्छादित है। और बाकी जो सुप्रीम वर्ल्ड है ना, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो 75% जो है वो ऊपर की ओर है। यानी यहाँ पर बता रहे हैं, इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोक से पूर्ण है, यानी थोड़ा सा जो है वो आच्छादित है इन 24 तत्वों से, और बाकी अधिकांश ज्यादातर भाग जो है वो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है और जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है। बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अलग अलग वैकुंठ लोक कहा जाता है, और उनमें उनमें से गौलोक वृंदावन प्रमुख है। और गौलोक वृंदावन जहाँ पर साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वो सबसे प्रमुख है। मतलब बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, लेकिन चीफ ऑफ विच इज गौलोक वृंदावन धाम। जो गौलोक वृंदावन धाम है वो उन सबका प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वह भद अवस्था में होता है, लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। क्योंकि ये जो गोलोक, ये जो सांसारिक जो संसार है ना, भौतिक जगत, वो तो आशा देता है, उसमें तो अंधकार ही अंधकार है, क्योंकि भगवान का तेज यहाँ तक आ ही नहीं रहा है, 24 तत्वों से ढका हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते जब तक इस अंधकार जगत में रहेगा ना, तब तक वो बद्ध अवस्था में रहेगा, वो कैद ही होगा। जैसे कैदी जेल में कैसे कैद होते हैं, तो संसार में उसको कभी भी मुक्ति तब तक नहीं मिलती है जब तक वो वहां पर नहीं जाता है। लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट देता है, कैसे काटना है, असंग शस्त्र है ना, तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे ही काट देगा तो आध्यात्मिक आकाश में पहुंच जाता है, क्यों ही वह मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है, तब वह वहां वापिस नहीं आता है। फिर वापिस जब वहां पर चले जाएंगे तो भगवान ने साफ साफ बताया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जो मेरे धाम में आ जाते हैं उन्हें वापिस इस संसार में नहीं आना पड़ता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है, वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीव बनता है। यहाँ पर वो आकर भ्रमित हो जाता है कि मैं स्वामी हूँ, मैं ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, लेकिन जब वो आध्यात्मिक राज्य में चला जाता है तो अपनी आध्यात्मिकता, अपनी सच्चित आनंदमय जीवन को, अपनी वास्तविकता को वापस से प्राप्त करता है और भगवान का पार्षद बन जाता है। श्री प्रभुपाल जी यहाँ पर आगे बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि ये संसार मिथ्या है और इस संसार में आपके लिए कभी सुख है ही नहीं, और जब तक आप गोलोक वृंदावन धाम में नहीं जाते हो आपको सुख प्राप्त नहीं होगा, तो ये सुनने के बाद यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध होना चाहिए कि इतना उसको इसके लिए क्रेजी होना चाहिए कि मुझे वही जाना है, इस संसार में रहकर क्या करो जहाँ पर कुछ असली है ही नहीं, तो उसे मुग्ध हो जाना चाहिए, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई से इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। अपने अंदर ऐसी इच्छा क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है जबकि हम जानते हैं कि संसार में सब कुछ मिथ्या है। देखो हम संसार में क्या चाहते हैं कि हमें सुख मिले ना, तो सुख हासिल करने के लिए क्या ज्यादा से ज्यादा सुख की सामग्री में मैं आपको बताऊं, बंगलो होना चाहिए, बहुत बड़ा महल होना चाहिए हमारा, एक अच्छी पत्नी होनी चाहिए, अच्छे पुत्र होने चाहिए, अच्छे माँ बाप होने चाहिए, अच्छा परिवार होना चाहिए और बहुत सारी धन संपत्ति होनी चाहिए तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर ऐसी अवस्था आपको प्राप्त हो जाए तो भी आप सुखी होगे, इसकी गारंटी है आपके पास। देखो मैं आपको उदाहरण देती हूँ, भगवान श्री राम इस संसार में आए, उनका घर महल था, क्योंकि वो राजा थे अयोध्या के, उनका घर महल था। तीन माताएं थी जो बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, उनकी पत्नी लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी देवी जो सीता मैया के रूप में, उनकी लक्ष्मी जैसी पत्नी, स्वयं लक्ष्मी उनकी पत्नी, और दो बहुत ही सुपुत्र लव और कुश उनके बेटे थे। भगवान दिखाना चाहते हैं कि जब मैं इस संसार में आया ये सारी चीजें मेरे पास थी तब भी मैं सुखी नहीं रहा, इस संसार में सुखी रहने की ये सब हमारे इतिहास क्यों रचा जाता है, ये वेदव्यास जी ने सारे इतिहास क्यों लिखे हैं, क्योंकि वो हमें ये बताते हैं, गाइड करते हैं कि यहाँ पर सुख नहीं मिले। अब देखो सीता मैया, एक लड़की क्या चाहती है कि मेरा पति जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, बहुत अमीर हो और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करे, तब मैं सुखी रहूंगी, ठीक है। अब सीता मैया जो कि राजकुमारी थी, उनकी शादी हुई एक राजकुमार से जो अयोध्या के राजा स्वयं भगवान थे, ठीक है, उनके साथ उनकी शादी हुई और सीता मैया से वो बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कहां सुख देखा। सुख अगर इस संसार में होता तो दिखता ना, है ही नहीं, तो चाहे आप भगवान भी बनकर आओ तो यहाँ पर इस संसार में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो भी सुख नहीं मिलेगा। आप सत्यवादी बनो, आप बहुत बड़े राजा बन जाओ, आपको सब सब चीजें जो आप चाह समझते हो जिससे कि इससे मुझे सुख मिलेगा वो प्रोवाइड की जाए, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिलेगा। और इस सच्चाई को जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी बोले हमें इच्छा करनी चाहिए कि इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर दें। इस संसार में सुख नहीं है तो वहां जाने की कोशिश करें। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त हैं उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे कल आप बोल रहे थे ना कि कितना मुश्किल है इस संसार में आकर इससे विलग रहना, आसक्ति को खत्म करना, कामनाओं को खत्म करना, लेकिन करना पड़ेगा। अकलमंदी इसी में है कि हम इस संसार से अपनी आसक्ति को हटा लें। भगवान हमें मजबूर नहीं करेंगे। भगवान तो बोल रहे साफ साफ यत्तेचसि तथा कुरु, जो मैंने जो कुछ सच्चाई है मैंने बता दी तुमको, अब तुम्हें जैसे अगर माँ है अपने बच्चे को बता दी, देखो बेटा ये दलदल है, इसमें आप गिरे हुए हो ना, ये दलदल है, इसमें आपको साफ करने की जरूरत नहीं है, इसमें रहकर आप सुखी नहीं आ सकते हो सकते हो, आप आ जाओ मेरे पास आओ, मैं आपको साफ कर दूंगा, मैं आपके अपराधों को क्षमा कर दूंगा और मेरे पास आकर आप सुरक्षित हो जाओगे। तो बच्चा अगर फिर भी उसी दलदल में खुशी ढूंढ रहा है कि नहीं वहां पर कमल नजर आ रहा है, वहां पर फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, वहां पर अच्छा नजर आ रहा है, मैं इसी में एंजॉय करना चाहता हूं, तो इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी? अकलमंदी तो यही है ना कि वो बच्चा अपने माँ का हाथ पकड़े और दलदल से बाहर निकले। यही चीज श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो इस संसार में अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके लिए क्रमशः छूट जाने की संभावना है। क्योंकि एक ही तरीका है, केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना, केवल भगवान की भक्ति एक्सेप्ट करना, उसी से क्या होगा, क्रमशः उसकी आसक्ति संसार से अलग हो जाएगी। और संभावना है, श्री प्रभुपाद जी बोलते पॉसिबल है, अगर आप कृष्ण भावना एक्सेप्ट करते हो तो पॉसिबल है कि आप इस दलदल से बाहर निकलो। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। भक्तों की संगति का मतलब है भक्तों के साथ रहकर भगवान की भक्ति सीखनी चाहिए, भगवान के बारे में सीखना चाहिए। भक्तों के साथ रहकर उनसे ये जो सीनियर भक्त हैं वो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम भगवान की भक्ति करेंगे और कैसे हम उनके साथ, हमें भक्तों के जो शब्द है ना उनकी तरफ आकर्षित होना चाहिए, ना कि भक्तों के तरफ आकर्षित होना चाहिए। तो वो संगति से हमें बताएंगे। और ये इसका मतलब ये नहीं, हमें क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करने से क्या हमें आशीर्वाद मिलेगा, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए कि जो उन्होंने बोला, लेकिन उनके अंदर आसक्ति, क्योंकि असंग शस्त्रेण चित्वा, आसक्ति चाहे किसी के अंदर भी होगी तो वो हमारे आत्मा को बंधन में डालेगी। तो यहाँ पर बताते हैं उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए, जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो, जो अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आपको भक्ति नहीं सिखा रहा है, बल्कि वो तो स्वयं सरेंडर है, भगवान श्री कृष्ण के समर्पित है, वही आपको भक्ति सिखा सकता है और उससे सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति का विच्छेदन करता है। फिर जब ऐसे भक्त जो स्वयं समर्पित है, जैसे श्रील प्रभुपाद, छठ गोस्वामी है ना, और जो हमारे हरिदास ठाकुर और इस तरह के जो महान आचार्य हैं, उनके पद चिन्हों पर जब चलेंगे, उनके आदेशों पर जब हम फॉलो करेंगे, तो इस प्रकार संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेदन कर सकते हैं। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेदन हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। खाली सन्यासी बन जाओ, केसरिया वस्त्र पहन लो, तो उससे थोड़ी ना आसक्ति खत्म होगी, उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। अब भक्ति का क्या मतलब है, श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, भजने रमध्य श्रेष्ठ नवधा भक्ति, कृष्ण प्रेम धरे महाशक्ति। कि अब भक्ति करनी है ना, तो उसके लिए क्या करना है, आपको नवदा भक्ति में से किसी एक को चुनो। क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इन इन नवदा भक्ति में से चुनो। लेकिन फिर आगे बताते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, लेकिन फिर भी इन इन सारी भक्ति के में अंदर भी सबसे श्रेष्ठ क्या है, भगवान के नाम का संकीर्तन, इसको आप चुनो, ये है महान भक्ति। और संकीर्तन क्योंकि संग के साथ हो सकता है, बस आपको क्या करना है, श्रवण और कीर्तन, ये दो, श्रवण कीर्तन के जल से इस भक्ति लता बीज को पोषित किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है, बस ये दो काम करने। भगवान जब आपको कोई सीनियर होता है उससे सुनने का मौका मिलता है तो कभी भी उसको मिस नहीं करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो नाम संकीर्तन है, आपका जो जपा है, वो तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक आप कंटिन्यूस श्रवण नहीं करते हो। श्रवण करने से भजन में आसक्ति होती है, श्रवण करो कीर्तन करो, श्रवण करो कीर्तन करो, यही भक्ति है इस कलयुग के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना चाहिए, यानी श्रवण और कीर्तन के, जिसके अंदर भगवान की कथा को श्रवण करने का की रुचि नहीं है, उसके लिए भागवतम में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 8 पहला सिकंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 8 में बताते हैं, सूर्य गोस्वामी कहते हैं, धर्म सुनिश्चितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। यदि आप अपने सारे धर्मों का पालन करते हो और उसके बावजूद आपके अंदर भगवान की कथा सुनने के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई है, तो आज तक तुमने जो भी धर्म का पालन किया है वो गधे की तरह मेहनत, यानी कि ऐसी मेहनत की है जिसका कोई लाभ नहीं है। जैसे किसान बीज डालता है खेत में और खेत को पूरा मतलब जितना भी टाइम होता है खेत जोतता है, उसमें पानी डालता है, उसको सींचता है, उसको उसको पूरा पूरा पोषण देता है, लेकिन जब वृक्ष निकलने का होता है तो कुछ भी उत्पन्न हो, मतलब पूरी मेहनत करो उसके अंदर से फिर भी वृक्ष ना निकले तो कितने कितने दुख की बात है। उसी तरह से बोलते हैं कि अगर आप संपूर्ण कार्य अपने सही कर रहे हो, सारी जो अपने कार्य हैं, जो कर्म है वो अच्छे कर रहे हो, उसके बाद अगर आपके हृदय में भगवान की कथा सुनने की आसक्ति उत्पन्न नहीं होती है, नोत्पादयेत यदि रतिम, अगर रति उत्पन्न नहीं हो रही है, श्रम एवहि केवलम, तो उसी तरह जैसे किसान ने पूरा काम तो करा लेकिन उसमें से फल नहीं निकले, उसमें से वृक्ष नहीं निकला, तो उसी तरह यहाँ पर भी कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा, अर्थात श्रवण और कीर्तन के प्रति आसक्ति होनी पड़ेगी। अगर नहीं निकल रहा है वृक्ष तो किसान को परेशान होना चाहिए और खोजना चाहिए कि वो कौन सी मुझसे गलती हो गई कि नहीं हो रहा है, कौन सी मैंने ऐसी ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई, करने में कौन सा मतलब सही मैंने नहीं किया कि उसमें से वृक्ष नहीं निकल रहा है। उसी तरह यदि हम मनुष्य बने हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्यों मेरे हृदय में भगवान की कथा सुनने की रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है। नहीं हो रही है इसका मतलब है मैंने अब तक जो जीवन व्यतीत किया है वो सारा का सारा रॉन्ग किया है, गलत किया है, क्योंकि अगर सही करता तो शास्त्र कहता है कि आपने सिर्फ श्रम किया है, आपको ये सब करने के बाद भगवान की भक्ति में कथा में रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने सब कुछ रॉन्ग किया, आज तक जो कुछ भी मैंने किया है सब वेस्ट ऑफ टाइम है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको हमें अनुसरण करना चाहिए। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध और सिद्ध रूप से दिव्य है। 14वें अध्याय में क्या बताया, क्योंकि हर चीज में क्या होता है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण गुण वास करते हैं तो वो दूषित हो जाते हैं, लेकिन भक्ति क्योंकि शुद्ध सात्विक है तो वो शुद्ध रूप से दिव्य होती है। यहाँ पर परम मम शब्द महत्वपूर्ण है, जो भगवान ने लास्ट शब्द बोला है ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, तो वो दिव्य लोक जो भगवान का है। श्री पप्पा जी बोलते हैं वास्तव में इस जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है। ऐसा नहीं है कि वो परम मम जो भगवान यद गत्वा न तद धाम परम मम वो ही मेरा धाम है। श्री पप्पा जी बोलते हैं हर जगह पर भगवान की मिल्कियत है, हर जगह पर भगवान का राज्य है, किंतु दिव्य जगत परम है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो सुप्रीम वर्ल्ड है और छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है, परम है। तद धाम परमम, वो मेरा परम नाम है, बाकी सब मेरी दूसरी धाम है, छोटी छोटी धाम है। भगवान ऐसे बताना चाह रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं परम दिव्य जगत परम है और छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद 2.2.15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश तथा तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कहा, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न उसको सूर्य प्रकाशित करता है न चंद्र और तारे, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। भगवान के अंदर से इतना तेज निकल रहा है कि किसी और लाइट की, किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। जैसे मैंने आपको कल बताया कि बताया था राधा गोविंद महाराज से कि आप संसार में कोई भी इम्पोसिबल चीज हो जाए तो आश्चर्य मत करो, लेकिन यदि आप किसी गुरु की शरण में रहकर भक्ति नहीं करते हो, विनम्रता के साथ उनकी सेवा करके आप भक्ति के उसूलों को फॉलो नहीं करते हो, तब तक भगवान के धाम में जाना असंभव है। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं उस परम धाम में केवल शरणागति से पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।